الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. سورة زخرف آيات نمبر 57 سے 89 تک اس سورہ کو ہم انشاءاللہ آج مکمل کریں گے. آج کے سبق میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں کہ ایک تو پہلا مضمون جو آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں ان کو جواب، اور ان کے بارے میں اصل حقیقت، اور بہت اہم چیز اس لیسن میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو مسلمان ہی ہیں لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کو، ان کے نزول کو کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے. اور آج آپ قرآن سے اس کی دلیل سنیں گے، اور اس کے اندر آپ نوٹ بھی کر لیجئے گا، کیونکہ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ پھر کہتے ہیں قرآن میں لا کے دکھاؤ، اور قرآن میں واضح طور پہ آج کی آیات میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اسی طرح آپ کو دوستیوں کے بارے میں پتہ چلے گا آج کہ دوستیاں کون سی دوستیاں ہیں جو قیامت کے دن انسان کے کام آ جائیں گی، اور باقی ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی. اور پھر وہ جو جنت والے ہیں وہ کن نعمتوں کے اندر کھیلتے ہوں گے، اور جہنم والوں کا کیا انجام ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس سورت کا اختتام جو ہے وہ بھی شرک کے رد سے، اور اس چیز سے کہ جو لوگ بحثیں کرنے والے ہیں اور جو لوگ نہیں ماننے والے ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر یہ سورت مکمل ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں آج کی آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زخرف آیت نمبر 57 سے اینڈ تک. وَلَمَّا دُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب بیان کیا گیا مریم کے بیٹے کو، مثلا بطور مثال کے، کس نے بیان کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں مشرکین مکہ کو بیان کیا، ان کے سامنے مثال دی سعد ابن مریم کی. تو کیا ہوا ان کی قوم نے کیا کیا؟ اذا قومک، تو ان کی قوم نے اس وقت، قوم کون یعنی قریش نے، منہ یصدون، تو اس کے اوپر وہ چلانے لگے، خوشی سے تالیاں بجانے لگے، یعنی کہ ان کو حق پتہ چل گیا تھا. اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے نا، جب کسی کا مذاق اڑانا ہو، جب کسی کی بات کو یعنی کسی کو زج کرنا ہو نا، تو بعض لوگ پھر اس کی ایک بات پکڑ کے اتنا ہنستے ہیں اور اتنا مذاق کرتے ہیں، دیکھا دیکھا اس کی یہ بات، اس نے تو یہ کہا تھا، لو دیکھو ہم نے ایک نقطہ نکال لیا اس کی بات میں سے. تو کیا بات اصل میں کیا ہوئی تھی کہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اے قریش کی جماعت، اللہ کو چھوڑ کے جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں، تو کفار مکہ کیا کہنے لگے آگے سے کہ آپ نہیں جانتے کہ عیسیٰ نبی ہیں اور اللہ کے بندوں میں سے ایک صالح بندے ہیں، اور ان کی بھی اللہ کو چھوڑ کے پوجا کی جاتی ہے. اور اس پہ یہ لوگ بہت ہنسے اور خوشی سے چنانے لگے کہ دیکھا دیکھا ان کی بات کو ہم نے کیسا جواب دیا، کیسا ان کو لاجواب کر دیا. اس آیت کے متعلق دوسرا شان نزول یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 نازل ہوئی تھی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، اس سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، سب اس میں داخل ہوں گے. تو اس وقت ایک بندہ تھا عبداللہ بن عبد الزباری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم لوگ اس طرح، تم بھی اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، तो बेशक सूरज चांद की और फरिश्तों की और उजैर की और ईसा ने मरियम की इबादत की गई है, तो ये सब भी हमारे बुतों के साथ दोजख में दाखिल हो जाएंगे। और इसके ऊपर इनकी कौम चिल्लाने लगी खुशी के साथ कि देखो कैसा इनको जवाब दे दिया हमने, और इस बंदे ने कैसा जवाब दिया। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो बाज दफा वाकई ऐसा होता है कि जब लोगों ने बात सुननी नहीं होती ना, तो वो इस तरह की मीन मेखे निकालते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि जिससे बात मजाक के अंदर चली जाए और बाज दफा पूरी बात समझे बगैर उस चीज को पॉइंट बना के पूरी कुल बात नहीं समझनी। आजकल जैसे आप देखते हैं ना, कई लेक्चर्स में से या किसी की वीडियो में से छोटा सा एक क्लिप निकाल के फिर उसके बाद उसको लोगों को दिखाते हैं, देखो देखो ये कैसा, ये क्या कह रहा है, क्या कह रही है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर कमेंट्स और उसके ऊपर मजाक उड़ाना और उसके ऊपर एतराजात करना, ऐसी चीजें होती। तो उन्होंने बात को पूरा समझा नहीं, हालांकि अल्लाह ताला का वादा है कि जो भी जिसके लिए अल्लाह ताला ने खैर का फैसला कर दिया है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही फरमाया कि बेशक जिन लोगों के लिए हमारी तरफ से अच्छी जजा पहले से मुकर्रर हो चुकी है वो दोजख से दूर रखे जाएंगे। तो ये यानी ईसा बिन मरियम तो इनमें से नहीं है। वो कह रहे थे कि अगर वो ईसा जिनकी आप तारीफ करते हैं, जिनको आप नबी मानते हैं, अगर उनकी पूजा की जाती है, उनकी पूजा अगर वो भी जहन्नुम के अंदर जाएंगे फिर नौजु बिल्ला, तो हमारे बुत भी जाएंगे और हम भी चले जाएं, तो हमें फिर कोई एतराज नहीं है। और इसके ऊपर वो बड़ी हंसे भी कि देखो खुद ही कहते थे कि ईसा अलैहि सलाम तो अल्लाह के नबी, उनकी बड़ी तारीफें करते थे, तो अब देख लो इनकी बात को हमने कैसे इनके ऊपर ही रद्द किया है। तो बगैर बात को समझे वे और ऐसी बातें करने लगे और इसके ऊपर चिल्लाने लगे, हूटिंग करने लगे और कहने लगे कि ये आप हमारे बुतों की तो बुराइयां करते हैं, हमारे माबूदों की, लेकिन उनका मामला तो ईसा अलैहि सलाम जैसा ही है, देखो ईसा की भी पूजा की जाती है, उनकी भी पूजा की जाती है, तो मामला तो बराबर है। फिर तो इसका मतलब दोनों ही जहन्नुम में जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी कि वो इस तरह से करते हैं, उनके उनके इस रिएक्शन को यहाँ पे बताया गया कि देखो ये इस बात का जवाब इस तरह दे रहे हैं। और फिर एक और भी इसका शाने नजूल है कि देखें पीछे आयत में आया ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप पिछले पैगंबरों से पूछ लें, आयत 45 में, कि पूछ लें पिछले पैगंबरों से कि क्या रहमान के अलावा किसी और की पूजा की बात की गई है, उनको कहा गया कि किसी और को अल्लाह ताला के सिवा पूजो। तो तब उन्होंने कहा कि हाँ क्यों, ईसाई नहीं ईसा अलैहि सलाम की पूजा करते, तो ये नहीं सोचा कि ईसा अलैहि सलाम ने तो उनको नहीं हुक्म दिया। और फिर इसकी इस बात के ऊपर कुफार ने बड़ा जोरदार कहकहा बुलंद किया और नाले लगाने लगे कि देखो जरा हमने कैसे इनको लाजवाब कराया। तो वहां पे इनको जवाब नहीं दिया गया, बल्कि आगे जाके यहाँ पे इनको जवाब दिया गया कि देखो ईसा अलैहि सलाम की मिसाल देके, और जो है ये जब इनको मिसाल दी गई तो ये उसके ऊपर चिल्लाने लगे, वकालू, और कहने लगे आलिहातुना खैरुन अम हुआ, क्या हमारे इलाह बेहतर है या वो, यानी दोनों बराबर ही हो गए ना, हम भी उनकी पूजा करते हैं इन बुतों की और ईसाई ईसा अलैहि सलाम की पूजा करते हैं, तो क्या फर्क रहा आली हाथुना से उनके बुत या जिनको भी वो पूजते थे, फरिश्ते कहते थे अल्लाह की बेटियां नऊज़ बिल्ला, और अम हुआ, हुआ से मुराद ईसा अलैहि सलाम, मा दराबूहु लका इल्ला जदला, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं उन्होंने बयान किया इसको तेरे लिए मगर झगड़े के तौर पे। उनका काम ये नहीं कि वो हक को जाने या समझें कि क्या असल बात है, बल्कि क्या मामला है, असल में सिर्फ झगड़े करना चाहते हैं, बहसे करना चाहते। जब मानना ना हो किसी इंसान ने तो वो यही तरीका कार इख्तियार करता है, या जिसके पास दलील ना हो ना फिर वो चिल्लाता है, शोर मचाता है और दूसरे की बात को दबाने की कोशिश करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा नापसंदीदा आदमी वो है जो सबसे ज्यादा झगड़ालू हो, यानी इंसान कोई बस उसका काम ही झगड़े करना, बहसें करना, गुस्से करके दिखाना, चिल्लाना, बात को समझना ही ना, अखलाक की हदें पार कर जाना, कभी भी किसी किसी पैगंबर का ये तरीका कार नहीं रहा कि लोगों के इनकार के बाद वो झगड़े करने लगे हैं और उनसे इस तरह की चीखना चिल्लाना या अखलाक से गिरी हुई कोई बात करना, इस तरह ये पैगंबरों का काम नहीं रहा, काफरों का काम ये जरूर रहा है। तो हमें भी इससे सीखना चाहिए कि झगड़ा अल्लाह ताला को पसंद नहीं। जब आपने अपनी बात समझानी हो ना, चाहे आपके कोई प्यारे हैं उनको समझानी है, अपने बच्चों को चाहे समझानी है, या अपने वालदैन को समझानी है, या अपने किसी भी दोस्त अहबाब को समझानी है, तो कभी भी ऐसे ना करें कि चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, या उनके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर दें, या फिर उनकी अना को जगाएं कि भाई उनको बेइज्जत करके लोगों के सामने कोई उनकी इज्जत उछाल के, ये तो ऐसे करते हैं, ये तो ये करते हैं, इनको तो ये भी नहीं आता, ये तो इस तरह से करके कभी भी आप किसी से हक को मनवा नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं ना, खैरख्वाही है आपके अंदर कि दूसरा बंदा हक को समझ ले और मान ले। बाज दफा हम मस्जिद वगैरह में जाते हैं, वहां पे हम किसी के ऊपर इस तरह से तान शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, या उनको उसको लोगों के सामने बेइज्जत करते हैं, इस तरह वो कभी भी नहीं मानेगा। याद रखिए, आप चाहे हक पे भी है ना, तब भी झगड़े से परहेज करें, क्योंकि झगड़ों से कभी आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा नहीं सकते, या बदअखलाकी के साथ, या किसी को लेट डाउन करके, किसी को किसी की इज्जत उछाल के, बल्कि जब हक बात भी पहुंचानी तो मोहब्बत और खैरख्वाही के अंदाज में, तब आप हाँ हक बात पहुंचा सकते हैं। यही तरीका पैगंबरों का रहा है, कभी भी उनका ये तरीका नहीं था कि वो झगड़े करें। हम सोचते हैं अगर हम हक पे हैं तो हमारा बस अब ये तरीका सही है, अब हम चाहे झगड़ा करें, चाहे ऊंची ऊंची आवाज में बोलें, बदजुबानी करें, तो सही है ये नहीं। और वो लोग तो बातिल के ऊपर थे, वो झगड़ा करते थे। हक पे रहने वाले को ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए, ये बातिल परस्तों का तरीका होता है, क्योंकि जिसके पास दलील नहीं है ना, वो फिर बस इसी तरह करके अपनी बात को ऊपर करना चाहता है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास भी कोई काम की बात ना हो ना, फिर वो आगे से उनको कोई जवाब तो आता नहीं, तो लड़ना शुरू कर देते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उनके बात में वजन नहीं ना होता, तो इस तरह से दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। जो हक पे है उसको क्या जरूरत है, उसको तो जरूरत नहीं है कि वो चिल्लाए चीखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन लोगों ने हिदायत पर होने के बाद भी गुमराही इख्तियार कर ली, यानी हिदायत पर होने के बाद गुमराही इख्तियार कर ली, फिर उन्हें झगड़े ही नसीब होते हैं, यानी उनके पास हिदायत का पैगाम आ गया फिर भी उन्होंने गुमराही इख्तियार की ना, तो बस फिर वो झगड़ना ही उनके नसीब में रह जाता है और कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला ने इस चीज को यहाँ पे फरमाया कि वो सिर्फ झगड़ने वाले हैं, बल्कि वो कौमुन खसीमून, बल्कि वो एक कौम है जो झगड़ालू है, इनका काम ही यही है झगड़े करना, बहसे करना। और अल्लाह ताला के हाँ ऐसी बातें पसंदीदा नहीं है। इन हुआ इल्ला अब्दुन, नहीं वो मगर एक बंदा है, कौन? ईसा अलैह सलाम। वो ना खुदा है ना खुदा का बेटा, बल्कि सिर्फ खुदा का बंदा है। बंदा होने में और बेटा होने में ना बहुत फर्क है, इब्न में और अब्द में। देखिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान फरमा दिया कि वो अब्द ही है, चाहे वो किस तरह मौजाना तरीके से पैदा हुए, लेकिन फिर भी वो बंदे ही है, वो खुदा नहीं बन गए इस वजह से। और इसी को बेस बना के ईसाइयों ने उनको खुदा का दर्जा दे दिया, और उनका ये मकाम उनके बंदा होने की वजह से है, माबूद होने की वजह से नहीं। अनअमना अलैहिम, हमने इनाम किया उसके ऊपर। क्या इनाम किया? अल्लाह ताला ने उनको बिन बाप के पैदा कर दिया, पंगूड़े में वो उन्होंने कलाम किया, अल्लाह ताला ने उनको किताब दी, उनको रसूल बना के भेजा, और उनको और मुजजात अता फरमाए, व जअलना हुम मसलल्ली बनी इसराइल, और उनको एक मिसाल बना दिया, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानी बना दिया। کہ کوئی بھی بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہیں، البتہ ہم بنا دیں تم سے فرشتوں کو زمین میں خلیفہ، یعنی اگر ہم چاہیں تو تمہیں لے جائیں اور تمہاری جگہ فرشتے یہاں پر زمین پہ بسنے لگے. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ فرشتے بھی تمہارے ساتھ زمین پہ رہنے لگے، زمین پہ آباد ہو جائیں. کیوں یہ کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے اور ان کی بھی عبادت کرتے تھے. یہاں پہ ہر قسم کے شرک کا رد ہے اصل میں. تو فرشتوں کو اس لیے تم پوجا کرتے ہو کہ وہ آسمانوں پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ان کو زمین پہ بسا دے، وہ زمین پہ رہنا شروع کر دے، تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کا خلیفہ بنا دے. اللہ کے لیے تو مشکل نہیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ البتہ ایک علامت ہے قیامت کی. کون ہے وہ کی ضمیر کس طرف جا رہی؟ بعض کہتے ہیں قرآن کی طرف، ایک قرآن ہے، ایک مطلب نشانی ہے قیامت کی، یا ایک علامت ہے قیامت کی. تو زیادہ یہاں پر یہی بات سمجھ آتی ہے کہ پیچھے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی ہے، تو ہو کی ضمیر پیچھے کی طرف جاتی لوٹتی ہے، تو ہو سے مراد یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں. اور دوسری قرآت میں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ ڈفرینٹ قرآت ہیں قرآن کی اور سبھی ٹھیک ہیں، تو لعالمن بھی اس کو پڑھا گیا، سائن نشانی. تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت کے آنے کی ایک نشانی ہے. اور یہ ہمیں احادیث سے تواتر کے ساتھ یہ بات ملتی ہے، یعنی اتنی احادیث ہیں اس کے اوپر کہ ان کو رد نہیں کیا جا سکتا، اتنی زیادہ احادیث ہیں اس بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، احکام نافذ کرنے والے، عدل کرنے والے. وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے. جزیہ اس لیے کہ نان مسلم سے لیا جاتا ہے، نان مسلم کوئی رہے گا نہیں. اور اس قدر مال اٹھائیں گے کہ اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوا، اتنا مال ہوگا. حتیٰ کہ ایک سجدہ کرنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوگا. اور تم چاہو تو اس کی تصدیق اس آیت میں پڑھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت میں 159 میں فرمایا، اہل کتاب میں سے ہر شخص عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. اور دیکھیں ابھی تک تو اہل کتاب میں ہر شخص نہیں ایمان لے کر آیا نا، تو پھر اس وقت ایمان لے کر آئے گا، اس کا مطلب ہے وہ دوبارہ آئیں گے. یہ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، یہ سب کتابوں میں یہ حدیث ہے. اسی طرح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں یہ حدیث بھی ہے کہ ایک طویل حدیث ہے، اس میں یہ ایک حصہ ہے کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اور اس ذکر میں فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم جامع مسجد دمشق میں، دمشق کہاں ہے؟ سیریا میں، اس کے سفید مشرقی مینار پر اس حال میں اتریں گے کہ انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے دو حلے پہنے ہوئے ہوں گے، یعنی دو کپڑے ہوں گے ہلکے زرد رنگ کے، اور انہوں نے دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے. جب آپ سر نیچا کریں گے تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور جب اوپر سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح سفید دانے جھڑ رہے ہوں گے، پانی یعنی جھڑ رہا ہوگا. اس حدیث سے بھی ہمیں اتنی ڈیٹیل ملتی ہے کہ ان کے کپڑوں کا رنگ بھی اور کس طرح وہ اتریں گے اور کہاں اتریں گے، یہ سب اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ اس چیز کا انکار اس لیے کر دیتے ہیں کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ویسا سمجھے نہیں کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ علا کلی شئین قدیر ہے. وہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے اتار دے اور پھر لوگ ان پر ایمان لائیں گے. اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت بہت زیادہ یعنی بگڑی بھی ہوگی، یعنی وہ دجال اور اپنے ساتھ 70,000 کی فوج لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا، اور مسلمان پسپا ہوئے جا رہے ہوں گے، اور اس کے بعد ہی عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، मेरे और ईसा अलैहि सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं, और वो आसमान से नाजिल होंगे। जब तुम उनको देखोगे तो पहचान लोगे, उनका रंग सुर्ख या मेज सफेद होगा, कद दरमियाना होगा, वो हल्के जर्द रंग के हुल्ले पहने होंगे, उन पर तरी नहीं होगी, लेकिन गोया उनके सर से पानी के कतरे टपक रहे होंगे, और वो लोगों से इस्लाम पर किताल करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे, जिजिया खत्म कर देंगे। अल्लाह इनके जमाने में इस्लाम के सिवा बाकी तमाम मजाहिब को मिटा देगा। वो मसीह दज्जाल को हलाक करेंगे, 40 साल जमीन में कयाम करने के बाद वफात पाएंगे, और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। अबू दाऊद की रिवायत है, मुस्नद अहमद में ये रिवायत है। इसलिए आपको खास तौर पर बता रही हूँ कि आप लोगों को पता रहे कि ये कितनी मुस्तनद किताबों में से, सहासित्ता में जो हैं उन किताबों में से ये रवायात हैं। उसके बाद भी ये कहना कि हम नहीं मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और ये तो ऐसे ही बातें हैं और ये गलत होगा, इस इन सारी अहादीस को रिजेक्ट करने वाला, तो आप सोचें बुखारी मुस्लिम और इन इनकी भी अहादीस को जो रिजेक्ट कर ले, फिर उसके बाद क्या है? बुखारी में भी एक और रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लोगों की निस्बत इब्ने मरियम से सबसे ज़्यादा करीब हूँ, और अम्बिया बाप शरीक भाई हैं, मेरे और उनके दरमियान कोई नबी नहीं। और फिर बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिजी में एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा, है तुम्हारी क्या शान होगी जब इब्ने मरियम तुमने तुम में नाजिल होंगे और इमाम तुम में से होगा, यानी महदी होंगे उस वक्त इमाम, और उस वक्त इब्ने मरियम उतरेंगे, और वो कत्ल नहीं किए गए। सूरह निसा 157 से 158 आयात तक अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया, व मा कतलूहू व मा सलबूहू वलाकिन शुब्बिहा लहू, ना उनको कत्ल किया गया ना उनको सूली दी गई, लेकिन उनके लिए मुशाबे बना दिया गया, शबीह दे दी गई किसी और को उनकी। और जिन्होंने इस मामले में इख्तलाफ किया वो जरूर इसके मुतल्लिक शक में, और उन्होंने यकीनन, अल्लाह ताला ने फरमाया, व मा कतलूहू यकीना, उन्होंने यकीनन कत्ल नहीं किया, बर रफअहुल्लाहु इलैह, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। अब क्या इसके बाद बात रह जाती है, ये कत्ल भी नहीं हुए हैं, सूली भी नहीं चढ़े हैं, अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया अपने पास, फिर उसके ऊपर इसकी बहसें करना और ये सोचना कि मिर्जा कादियानी जो है वो अल्लाह माफ करे कि वो ये कहता है कि मैं ईसा बिन मरियम हूँ, अल्लाह ताला माफ करे कि उसने अपना नाम भी, उसने कहा कि मेरा नाम ईसा है और कुरान में जो आयात है वो मेरे बारे में उतरी है। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। और ऐसे लोग फिर लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं और कुछ लोग इनके पीछे चल पड़ते हैं, जबकि सबको पता है कि वो पैदा हुआ है एक घर के अंदर, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं होंगे, वो उतरेंगे आसमान से। तो इस में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मतलब आखरत का जो कयामत का है निशानी, वो एक निशानी ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल भी है। और साफ तौर पे एक हदीस में तो मुस्लिम की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कयामत की निशानियां बताई हैं उनके अंदर एक निशानी ईसा अलैहि सलाम का नजूल भी है, जो बड़ी निशानियां बताई हैं, जिनमें सूरज का मगरिब से तुलू होना भी है, दाबतुल अर्द भी है, दज्जाल भी है, याजूज माजूज भी है, 3 दफा जमीन का दसना भी है, और यमन से आग का निकलना भी है। 10 निशानियां हैं, उनमें सारों को मान लेते हैं, लेकिन ईसा अलैहि सलाम की आमद के ऊपर इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि किस तरह से इस चीज को मान लें हम, क्योंकि जो लोग सिर्फ अपनी अकल को इस्तेमाल करके उसके ऊपर सब चीजों को रखते हैं, उनकी जब अकल में कोई चीज नहीं आती तो वो उसका रद्द करने खड़े हो जाते हैं, जबकि हमने ये नहीं देखना कि हमारी अकल में आ रही है या नहीं, हमने ये देखना कि जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो या अल्लाह ताला ने अपनी बात कुरान करीम में बता दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमा दी, तो हमारे लिए वो हक है, चाहे हमारे लिए कितना ही मुश्किल है कि ये कैसे होगा, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। फला तमतरुन्ना बिहा, तो ना तुम शक करना इस बारे में, वत्तबियून, और पैरवी करो मेरी, लोगों इस बारे में शक ना करना कि ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होगी, लेकिन फिर भी देखें आज शक कर रहे हैं।